नवीन गोयंका ने रक्षित को जेल से बाहर निकलवा दिया था। उन्होंने शर्त रखी थी कि इसके बदले में वो मुंबई छोड़कर चला जाएगा। जाने से पहले रक्षित एक बार दीवा से मिलना चाहता था। उसने दीवा को कॉल करके इस बारे में पूछा तो उसने मिलने के लिए हाँ कह दी थी। कल वे दोनों सुबह अपने ही हाईस्कूल में मिलने वाले थे। रक्षित से बात करने के बाद दीवा जल्दी से घर पहुंची। आर्यांश ने उसे 40 मिनट का टाइम दिया था। घर में घुसते ही उसने देखा तो अभी 35 मिनट ही हुए थे। दीवा ने राहत की सांस ली कि उसने आर्यांश के दिए समय से पहले ही घर में कदम रख दिया था। जैसे ही दीवा अंदर गई, उसकी नज़र सामने खड़े आर्यांश पर पड़ी, जो हाथ बांधे उसी को घूर रहा था। उसकी नज़रें ही काफ़ी थीं दीवा के दिल में डर पैदा करने के लिए। दीवा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस ली। उसने अपने माथे पर उभरी पसीने की बूंद को साफ किया और हल्का मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने खाना खा लिया है? दीवा को बात करने का और कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसने यही पूछ लिया था। मेरा छोड़ो, तुम खाना खा चुकी हो क्या? तुम्हारे लिए मेरी बातों की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। इतना देर घर क्यों आई हो? आर्यांश गुस्से में थोड़ा सख्ती से बोला। आर्यांश की आंखों में गुस्सा था। एक तो वो लेट आई थी, ऊपर से उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी। क्या उसके दिल में आर्यांश का बिल्कुल भी डर नहीं था, जो उसके घर जल्दी जाने के कहने के बावजूद वो बाहर घूम रही थी? दीवा ने नज़रें झुकाकर कहा, मॉम और डैड को मेरी याद आ रही थी तो उनसे मिलने के लिए चली गई थी। अगर ऐसा ही है तो वहीं जाकर रहो, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा। हालांकि वो सार्कास्टिकली ऐसे बोल रहा था, लेकिन दीवा की आंखों में खुशी के मारे चमक आ गई थी। उसने जल्दी से आर्यांश की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या सच में मैं उनके पास रहने जा सकती हूँ? एक पल में ही दीवा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। आर्यांश आंखें छोटी करके उसकी तरफ देख रहा था, मतलब साफ था कि वो उसे ताना मार रहा था। दीवा के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर आर्यांश को अच्छा नहीं लगा। उसका मन किया कि वो दीवा के पास जाकर उसे प्यार से सहलाए और उसे शांत करे, लेकिन फिलहाल वो खुद को कंट्रोल किए हुए था। वो दीवा को हर हाल में खुश देखना चाहता था, लेकिन साथ ही वो उसे अपने पास भी चाहता था। ऊपर जाओ, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा। क्या? लेकिन क्यों? दीवा ने हल्का घबराकर पूछा। उसे लगा आर्यांश फिर उसके साथ कुछ करने के मूड में है, लेकिन उसका गुस्सा देखकर उसे डर भी लग रहा था। गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाता था। क्यों, क्या? जाकर नहाओ और सो जाओ, आर्यांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन मुझे सोना नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं टीवी देखना चाहती हूँ, दीवा ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। अच्छा, और ऐसा क्या आता है टीवी के अंदर जो तुम देखना चाहती हो? सब बेकार है और रिपीट टेलीकास्ट में मिल जाएगा। जो कहा है वो करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिस सीरियल को देखने के लिए जिद कर रही हो उसी के सीन मेरे साथ करने पड़े, आर्यांश ने उसे घूरते हुए कहा। आर्यांश उसकी पसंद अच्छे से जानता था कि उसे रोमांटिक शोज ही देखना पसंद होंगे। दीवा ने जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, इससे अच्छा मैं सोने चली जाऊंगी। पूरे दिन बाहर थी और नहाएगा कौन? आर्यांश ने भाव उठाकर कहा तो दीवा ने अपना हाथ ऊपर कर दिया था। इसे गीला नहीं कर सकती और एक हाथ से मुझे नहीं होगा, मैं चेंज करके सो जाऊंगी, दीवा ने गहरी सांस लेकर कहा और वहां से जाने लगी। तभी आर्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। मेरे होते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? बस इतनी सी बात, लो मैं नहला देता हूँ, आर्यांश ने एक शरारती आवाज में कहा। दीवा ने आज ही सोचा था कि वो जितना हो सके उतना आर्यांश से दूर रहने की कोशिश करेगी। दीवा ने जवाब में कहा, नहीं, मुझे तुमसे नहीं नहाना है, मुझे बहुत अजीब लगता है। और क्या अजीब लगता है? मुझे बताओ, तुम्हारी बॉडी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां मैंने टच नहीं किया है? मैं हर तरह से तुम्हें महसूस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, फिर किस बात का पर्दा है? आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा। उसने दीवा के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधा ऊपर लेकर गया। दीवा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यांश ने उसे कपड़ों सहित बाथ टब में डाल दिया था। दीवा कुछ कहती उससे पहले आर्यांश ने नल चालू किया और दीवा से बोला, अपने दूसरे हाथ को बाहर रखना वरना वो गीला हो जाएगा, डॉक्टर गोयंका। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यांश जानबूझकर दीवा के साथ खेल रहा था। उसने एक एक करके दीवा के कपड़े निकाले और उसकी बॉडी को साफ करना शुरू कर दिया था। वो जानबूझकर दीवा की बॉडी को बिल्कुल हल्के हाथों से छू रहा था ताकि उसे कुछ महसूस हो। दीवा अंदर ही अंदर खुद में सिमटी जा रही थी। प्लीज मत करो आर्यांश, दीवा ने धीमी आवाज में कहा। अचानक आर्यांश दीवा के पास आया। उसने उसके कंधे पर सर रखकर कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया दीवा गोयंका, तुम मुझे जितना खुद से दूर करने की कोशिश करोगी मैं उतना ही करीब आता जाऊंगा। दीवा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो गुस्से में सख्त आवाज में बोली, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आखिर मेरी क्या अहमियत है तुम्हारी लाइफ में? जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे करीब आती है तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले जाते हो, और वो दूर चली जाती है तब तुम्हें मेरी याद आती है। आर्यांश समझ गया था दीवा यहाँ कियाना की बात कर रही है। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। उसने मन ही मन कहा, तो इस बेवकूफ लड़की को लगता है कि कियाना मुझसे दूर जाती है तब मैं इसके पास आता हूँ, जबकि ये नहीं जानती कि वो तो हरदम मेरे पास रहने के लिए तैयार है। आर्यांश ने गहरी सांस ली और उसने दीवा से कहा, सीधे सीधे बताओ तुम चाहती क्या हो, इस तरह घुमा फिराकर बातें मत करो, मुझे समझ नहीं आता है। दीवा की आंखों में जलन साफ बता रही थी कि वो आर्यांश के करीब किसी और को नहीं देख सकती थी। जब तक दीवा अपने मुंह से सच एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक आर्यांश भी उसे कियाना और अपने रिश्ते का सच नहीं बताने वाला था। दीवा भी जिद्दी थी, वो कभी खुद अपने मुंह से कुछ एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। उसने आर्यांश की आंखों में देखा और कहा, आजादी चाहती हूं मैं, क्या दोगे तुम मुझे? दीवा की बातों ने आर्यांश को गुस्सा दिला दिया था। दीवा की जिद उसे अपने पहले प्यार की याद दिलाती थी, वो भी ऐसे ही जिद करती थी, और उस वक्त आर्यांश को ऐसे लगता था जैसे उसके दिल में कोई हजारों खंजर चला रहा हो। अचानक आर्यांश दीवा के पास से खड़ा हुआ और उससे थोड़ा दूर जाकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा तो तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए, ठीक है, आज तुम्हें वो मौका दे ही देता हूँ। अगर आज तुम इस घर से बाहर कदम उठाकर यहाँ से चली जाओगी तो आई स्वेयर कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा। आर्यांश के शब्दों में जो धमकी थी वो दीवा अच्छे से समझ सकती थी। आर्यांश अच्छे से जानता था कि दीवा यहाँ से बाहर कदम नहीं उठा पाएगी, अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके डैड को बर्बाद कर देगा। वैसे भी वो उनकी इकलौती बेटी थी और उनका बिजनेस संभालने के बजाय मेडिकल प्रोफेशन में चली गई थी। मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, दीवा ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों, क्या हुआ? अब आजादी नहीं चाहिए? इस तरह मुस्कुराकर क्या साबित करना चाहती हो? आर्यांश उसे घूरते हुए बोला, कुछ भी नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर कम से कम मुझे चोट पहुंचाना बंद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, खुशी से रह लूंगी। जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, पर मेरे परिवार को कुछ मत करना, दीवा ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
आर्यांश इस तरह उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने यही सोचा था कि वो दीवा को खुशी देगा। इस तरह उसे दर्द में रोता देखकर उसका मन किया कि वो दीवा को उठाकर अपनी बाहों में भर ले और उसे शांत करवाए। वो उसके परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। न जाने कब दीवा ने उसकी धमकियों को इतना सीरियसली लेना शुरू कर दिया था कि वो उससे डरना शुरू हो गई थी। दीवा बाथटब में बैठी सिसक रही थी, तभी आर्यांश उसके पास आया और उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर उसे तौलिए में लपेट दिया था। चेंज करके बाहर आओ, आर्यांश बोला और फिर बाथरूम के बाहर चला गया। दीवा ने खुद को साफ किया और फिर चेंज करके रूम में पहुंची तो आर्यांश जो उसका इंतजार कर रहा था। दीवा के ज्यादा रोने की वजह से आंखें हल्की लाल हो गई थीं। आर्यांश उसके पास आया और उसने दीवा को अपनी बाहों में भर लिया था। दीवा की नजरें झुकी हुई थीं, वो चाहकर भी आर्यांश को मना नहीं कर सकती थी। आर्यांश ने दीवा की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, वो उसकी चिन पर किस करने लगा। दीवा आर्यांश से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि उसके करीब आने पर उसे अच्छा महसूस होता था। अगले ही पल वे दोनों बेड पर थे और देर रात तक एक दूसरे के प्यार में खोए रहे। अगली सुबह आर्यांश की नींद खुली तो दीवा सुकून से उसकी बाहों में सोई हुई थी। आर्यांश ने उसके फोरहेड पर हल्का सा किस किया और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका बस चलता तो वो पूरा दिन उसकी बाहों में बिता सकता था, लेकिन कल भी उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी, आज वो ऐसा नहीं कर सकता था। दीवा ज्यादा स्ट्रेस ना ले ये सोचकर उसने दीवा की एक हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन करवा ली थी, वैसे भी ये मुश्किल काम नहीं था। आर्यांश ने एक नज़र दीवा को देखा और फिर उठकर चला गया। कुछ देर बाद दीवा को गाड़ी की आवाज़ आई तो उसने आंखें खोली और दौड़कर जल्दी से बाहर आई। आर्यांश अपनी गाड़ी से जा चुका था, ये देखकर उसने राहत की सांस ली। दीवा ने आर्यांश को बताया नहीं था कि उसे रक्षित से मिलने जाना है। वो जल्दी से तैयार हुई तो नीचे पहुंची। उसे इतना जल्दी तैयार हुआ देखकर सुमन हैरान रह गई, क्योंकि आर्यांश ने उसे यही कहा था कि वो एक हफ्ते घर पर रहेगी और उसे उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। मिस गोइंका, आज आप इतना जल्दी क्यों उठ गई? मुझे लगा आप देर तक सोएंगी, सुमन ने पूछा। हाँ, वो मेरी कज़न ने मुझे शॉपिंग पर बुलाया है तो जल्दी उठ गई, दीवा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। आर्यांश के बजाय सुमन के सामने झूठ बोलना आसान था। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मिस्टर कपूर ने कहा था कि आपकी बैंडेज चेंज करवानी है, सुमन ने मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं सुमन माँ, मैं ठीक हूँ, आप बहुत काम करती हैं, आज आप थोड़ा आराम कीजिए, ये मैं खुद करवा लूँगी, दीवा ने जवाब दिया। नहीं मिस गोइंका, मुझे काम करना ही पसंद है, वैसे भी उम्र बढ़ने के बाद नींद कहाँ आती है, मैं आपके साथ चलूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सुमन ने सादगी से कहा। ठीक है, फिर वो करिए जो आपको करना पसंद है। अच्छा मुझे बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, दीवा ने पूछा। वो साथ में नाश्ता भी कर रही थी। मुझे कढ़ाई और बुनाई करना अच्छा लगता है, सुमन ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर आते वक्त मैं आपके लिए आपकी कढ़ाई और बुनाई का सामान लेकर आऊँगी, आप रेस्ट कीजिए मैं चलती हूँ, दीवा हंसकर बोली। उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और रक्षित से मिलने के लिए पहुँच गई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसकी चोट लगे होने की वजह से आर्यांश ने उसे छूट दे रखी थी और वो आसानी से रक्षित से मिलने के लिए आ गई। बस अब उसे ये कैसे भी करके आर्यांश से छुपा कर रखना था। क्या लगता है, दीवा आर्यांश से छुपा पाएगी? क्या वो कोई गलती नहीं करेगी? क्योंकि अक्सर उसी की गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है,
अगले चैप्टर पर मिलते हैं।